समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी हम बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, नमस्कार आदाब एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु हैव जॉइंड अस इन दिस येट अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा वेयर वी ब्रिंग यू न्यूज फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री बिकॉज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड दे कीप पोरिंग इन विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज दैट प्रोबब्ली डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन न्यूज बुलेटिन बट दैट्स व्हाई वी आर हियर इन परिक्रमा ब्रिंगिंग यू दोस soft stories, those interesting stories that make your day. और बाकी सब कुछ तो मुकेश ने बताया है क्या कुछ होगा. Of course, in the last segment, we'll remember some of their personalities who either have their birth or death anniversaries. We also remember an actress of yesteryears today, जिनका नाम बड़ा ही unique सा था. और आप सोचते रहिए वो कौन actress है, उनकी बात जब करेंगे तब करेंगे.
बिल्कुल.
Let's start with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi arrives in Kuwait on a two-day visit, says India deeply values historical connections with the country.
Gṛh Mantri Amit Shah ne Tripura ke Agartala mein Purvottar Parishad ki 72vi poorn baithak ki adhyakshata ki.
GST Council meeting underway at Jaisalmer in Rajasthan. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting.
Jaipur gas tanker durghatna mein marne walon ki sankhya badhkar 14 hui.
India signs $350 million loan agreement with Asian Development Bank to expand manufacturing sector in the country.
तनाव और हिंसा की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आज पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है.
And IMD forecasts severe cold wave conditions over Jammu Kashmir and Himachal Pradesh for the next 5 days. And now it's time for Dateline India. And as we mentioned in the headlines that today we are celebrating the World Meditation Day. And jab bhi loves meditation aata hai, it's even more relevant today. It's even more necessary today because in this very, very fast changing pace, that we are living today, our lifestyles are so fast paced that there is no time to halt and stare, as the great poet William Wordsworth said. Lekin brilliant things happen when the mind is calm. So it's very important ke bahar jitni bhi uthal puthal ho, lekin man hamesha shant hona chahiye. And I remember my guru Rajiv Lochan, he once said that even true passion should be very calm. And in fact, extreme passion jo hai wo calm hi hota hai, because just like ek batak jo hai chal rahi hoti hai पानी की सतह पे, तो ऊपर से शांत दिख रही होती है लेकिन नीचे हलचल होती है.
बिल्कुल.
बट इट डजंट अलाउ इट टू शो दैट हलचल ऑन द फोर फ्रंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस इवन फैक्ट हम लोग की जो कल्चर रहा है मुकेश, दैट यू मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे वर्शिप शिव जी. तो शिव जी के भी सर पे चांद होता है, तो उनका रुद्र रूप तो मशहूर है ही है, लेकिन उन्होंने भी एक संकेत दिया कि आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए.
बिल्कुल. और दिमाग ठंडा रखने के लिए सबसे कारगर तरीका है ध्यान.
एब्सोल्युटली.
तो बदलने की चाहत, बदलने की कोशिश, कोई अलग, बेहतर या नया बनने में बहुत सारा समय और प्रयास खर्च होता है. आप जैसे हैं वैसे ही अपने साथ सहज होने के लिए इस समय का क्यों ना उपयोग करें.
And just the chanting of Om brings a kind of a blanket of calmness with itself, Mukesh, because this is the sound of the cosmos. इसको लोग धर्म से जोड़ने लगे हैं, लेकिन अगर आप meditation करते हैं with the chanting of Om, it is actually you are in unison with the cosmos and the universe. So well, the world marks the 21st December 2024 as the first ever World Meditation Day, following a resolution passed by the UN. General Assembly on the 29th of November this year. Supported by countries like Sri Lanka, Nepal, Mexico and Andorra, the resolution was adopted unanimously by the UN General Assembly on 6th of December this year.
संयुक्त राष्ट्र महासभा का विश्व ध्यान दिवस को मान्यता देना बढ़ते तनाव, हिंसा और सामाजिक वियोग की समस्या का समाधान करने में ध्यान की क्षमता की एक ऐतिहासिक स्वीकृति है. 2024 का विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान है.
This year's theme emphasizes the role of meditation in fostering global peace and unity. India played a leading role in co-sponsoring a UN General Assembly draft resolution that officially declared the day as World Meditation Day. Meditation is appreciated for reducing stress, improving focus and fostering global unity.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि व्यापक कल्याण और आंतरिक परिवर्तन के लिए एक दिन खुशी है कि भारत के ने कोर ग्रुप के अन्य देशों के साथ मिलकर 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने का मार्गदर्शन किया. उन्होंने शीतकालीन संक्रांति के साथ मेल खाने वाली तिथि के महत्व को भी बताया जो भारतीय परंपरा में उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने कहा 21 दिसंबर साल का एक शुभ समय है, विशेष रूप से आंतरिक चिंतन और ध्यान के लिए. ये तारीख 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक 6 महीने बाद आती है.
That's true, Mukesh, and of course we all know the benefits of meditation. In fact, अगर जरूरी नहीं कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही रोज उठ पाए, बिकॉज वी ऑल नो कि हर इंसान खासतौर से जो शहरों में रह रहा है उनका सोना ही लेट होता है, विच इज अगेन बैड. बट टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वेन यू लीव द बेड, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वेक अप विद द अलार्म क्लॉक. आई थिंक दैट इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग दैट वन कैन डू टू वन्स ब्रेन एंड टू वन्स बॉडी, दैट यू आर वेकिंग अप विद सच अ हार्श साउंड. So it's very important that अगर आपकी नींद पूरी होती है, when you are well rested, then automatically you will wake up. When your body is ready to wake up, you know, it will automatically, you will open your eyes. And the first 10 minutes, if not half an hour, the first 10 minutes, I think it's very important to give to yourself with eyes closed. And उसी को आप meditation का रूप दे सकते हैं. जब से सबसे पहले आप जब उठते हैं, जरूरी नहीं कि आप योगासन में बैठे हैं. If you're doing that, that's very important. But to begin with, I think this is a very great step. The ambassador drew attention to India's role in promoting global wellness, and I'm quoting him. He said that in a decade it has become a global movement leading to common people across the globe practicing yoga and making it a part of their daily lives, unquote. This day is aimed to promote meditation as a practice for fostering harmony between the mind and the body, humans and nature, and achieving comprehensive human well-being, especially in a time of global conflicts and rising tensions.
इस पहल में भारत की भूमिका वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि ये घोषणा मानव कल्याण और वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ध्यान के सार्वभौमिक लाभों पर बल दिया और इसे आधुनिक समय में आंतरिक परिवर्तन और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपकरण बताया. मिशन ने कहा आधुनिक विज्ञान ध्यान के कई लाभों को प्रमाणित करता है जिसमें महत्वपूर्ण तनाव में कमी और संज्ञानात्मक और शारीरिक कार्यों में वृद्धि शामिल है.
That's true. This marks a significant moment in global recognition of the value of meditation and celebrated for its universality. Meditation is practiced across all regions of the world by people of all ages, backgrounds, lifestyles. We all sure do know about meditation, its transformative benefits for mental and physical health, and its potential to foster peace and unity. In fact, duniya ka koi bhi aap dharm utha le, Mukesh, toh jo bhi the simple act of prayer is nothing but meditation. And if we say that God is all powerful, then of course he doesn't need any you can say prayers of ours, but it's for our well-being. Jab hum log khud aankhe band karke dhyan karte hain and to be in one with the universe, with the divine power, even if you don't believe in that power but you believe in nature, just be yourself one with the nature. So it's very important. Aur detachment ka matlab ye nahi hota. Abhi recently maine bahut pyara sa quote padha, that detachment is not that you don't own anything. It is that nothing owns you. You know, you might have the best car in the world, but make sure that you own the car and the car doesn't own you.
Bilkul.
So that is the kind of detachment that all the gurus and all the sages used to speak of. And that kind of detachment brings in a sense of calmness. It brings in a sense of resoluteness in your personality.
बिल्कुल. इस दिन को मनाने के लिए भारत के स्थायी मिशन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की. इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में एक वैश्विक ध्यान सत्र आयोजित किया गया. इस पहल का उद्देश्य मानसिक कल्याण और वैश्विक शांति को बढ़ाने के तरीके के रूप में ध्यान को बढ़ावा देना है.
Yes, in fact, our country has a very rich tradition of meditation, and in recent decades, meditation has emerged as a very powerful tool in fostering international goodwill, promoting mental well-being, and also offering a unique philosophical perspective on life. So, there are so many. For example, even if we talk about females who are homemakers or even those who are career women, it's very important because अगर हम लोग जो है कई बार मुकेश हम अपनी जिंदगी में देखते हैं when I am not meditating enough, then वो कहीं ना कहीं वो बच्चों पे गुस्सा निकलेगा, you know. So it's very important that in order to have a very positive vibe in your home, it's important that each one in the household practices some form of meditation. जरूरी नहीं कि आप एक घंटा मेडिटेट करें, but even 10 minutes a day to start with is not a bad thing.
बिल्कुल. इस दिन की स्थापना मानव चेतना को पोषित करने और आंतरिक शांति और करुणा के माध्यम से संघर्ष, जलवायु संकट और तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के महत्व की याद दिलाती है. और ध्यान वह खोज है जिससे जीवन का लक्ष्य हमेशा तत्काल क्षण में प्राप्त किया जा सकता है. और सारा वक्त हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. इस क्रम में सबसे पहले कहाँ चलेंगे?
Well, we are heading our journey first from Nagpur today. Electric vehicles are the most promising futuristic transport system. And understanding that, a demonstration on fire safety measures for electric vehicles was held at the National Fire Services College in Nagpur recently. We have a report from our correspondent.
A demonstration on fire safety measures for electric vehicles was held at National Fire Service College in Nagpur recently, which showcased how to avoid and mitigate the fire incidents in electric vehicles, making it a safe mode of transport. Union Minister of Roads and Transport, Nitin Gadkari, addressed the attendees on the importance of having EV as a future industry.
About 30 lakhs EVs registered in India. 23-24, 45% increase of sales, 6.4% market penetration in 2024, and EV two-wheelers, 6% of total EV sales. 400 plus startups, particularly in electric two-wheelers, and hybrid and EVs, each is expected to have 8% market share by 2028. Indian EV market potential is rupees 20 lakh crore by 2030, creating 5 crore jobs across entire EV ecosystem. This is the industry which is number one as far as our exports are concerned.
This shows the super potential in EV market as an alternative to traditional fuels. The workshop also offered precautions to avoid fire incidents, including regular vehicle keep-up and proper charging points. This is Himangi Kulkarni with Dhananjay Vankhede for Parikrama from Akashvani Nagpur.
Aur sir, ab chalte hain Gujarat. कच्छ के सफेद रेगिस्तान में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव रण उत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटक कच्छ आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से चल रहे रण उत्सव में आने का आग्रह किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रण उत्सव पर्यटकों को कच्छ की शानदार संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य को देखने का अविस्मरणीय अनुभव और प्राचीन सफेद रण की खोज करने का अवसर प्रदान करता है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवंबर में शुरू हुआ ये महोत्सव 15 मार्च 2025 तक चलेगा.
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धोरडो में 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया प्रसिद्ध रणोत्सव अब वैश्विक कार्यक्रम बन गया है. यह उत्सव पर्यटकों को कच्छ के भूंगा नाम के विशिष्ट घरों में रहने का, ऊंट सवारी, स्थानिक संस्कृति, सितारों को निहारने और सफेद रेगिस्तान की अनूठी प्राकृतिक सुंदरता का यादगार अनुभव प्रदान करता है. राज्य सरकार द्वारा कच्छ में एक रेगिस्तान पर्यटन सर्किट विकसाया जा रहा है ताकि पर्यटक सीधी बस द्वारा धोलावीरा, काला डूंगर और प्रसिद्ध मांडवी बीच और कच्छ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सके। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
और गुजरात से अब चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ये रिपोर्ट हर दो साल में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है और देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन प्रस्तुत करती है।
इस रिपोर्ट में वनावरण, वृक्षावरण, कार्बन स्टॉक, वनाग्नि घटनाओं और कृषि वानिकी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जो भारत के पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को और समझ को और बेहतर बनाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 25% है। इसमें पिछले आंकलन की तुलना में 1,485 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्य सबसे आगे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण मौजूद है। रिपोर्ट में देश के कार्बन स्टॉक का भी उल्लेख किया गया है, जो 7,285.5 मिलियन टन है, जो पिछले आंकलन से लगभग 81 मिलियन टन अधिक है। यह दर्शाता है कि भारत ने अपने वन संसाधनों के संरक्षण और वृद्धि में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बने रहेंगे, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भी मौजूद उपाय करने के प्रयासों को बल मिलेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
और सायरा, भारतीय सेना आज जज एडवोकेट जनरल विभाग का 41वां कोर दिवस मना रही है। जनसंपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आज की डिफेंस न्यूज कैप्सूल में सुनिए जज एडवोकेट जनरल मेजर जनरल संदीप कुमार से ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ द्वारा की गई खास बातचीत के प्रमुख अंश।
भारतीय सेना आज 21 दिसंबर 2024 को जज एडवोकेट जनरल विभाग का 41वां कोर दिवस मना रही है। इस बेहद खास मौके पर हमने जज एडवोकेट मेजर जनरल संदीप कुमार से खास बातचीत की।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोतागण को मेरा हार्दिक अभिनंदन। 41वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
अगर बातचीत की शुरुआत करें तो जैग डिपार्टमेंट के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं, इसके बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं।
जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट की स्थापना मिलिट्री में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रखी गई है। जो भी जवान, ऑफिसर या जेसीओ साहिबान कोई गलत काम करता है, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कोई भी दंडात्मक कार्रवाई होती है, उस पर हमारे जैक ब्रांच के अधिकारी लीगल एडवाइस देते हैं और कमांडर्स को बताते हैं कि आगे कार्रवाई कैसे करनी है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड मिलिट्री जस्टिस इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस। The JAG department works to ensure that military personnel are held accountable for their actions and their justice is served in a timely and fair manner. To enhance the efficiency of the military justice system, JAG departmental officers regularly reviews and update military laws, procedures and provides training to military personnel on their rights and responsibilities.
और अगर बात करें, क्योंकि रेजिंग डे एक मौका होता है कि अब तक की जो जर्नी है उस पर भी नजर डालने का, तो सर अपनी स्थापना से लेकर अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है, कृपया उसके बारे में बताएं हमें।
जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट की स्थापना 1841 में हुई थी। प्रारंभिक स्वरूप में इसकी नींव बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में तीन न्यायिक पद सृजित किए गए। कालांतर में भारतीय सेना अधिनियम 1911 ने इस विभाग के महत्व को औपचारिक मान्यता दी, किंतु वास्तविक स्वराज की आत्मा के साथ यह विभाग 1 अप्रैल 1948 को पूर्ण रूप से भारतीय सेना का अंग बना और 21 दिसंबर 1949 को विधिक स्वरूप में स्थापित हुआ। 1949 के बाद से जज एडवोकेट जनरल विभाग की जर्नी काफी मोमेंटस रही है। इस दौरान 1992 में आर्मी एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और ये परिवर्तन इस प्रकार से किए गए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और रेलिवेंट लॉस के समकक्ष आ सके। 1992 के बाद 2013 में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की स्थापना हुई और इस 75 वर्षों के दौरान हमने कई पॉलिसी लेटर्स, आर्मी ऑर्डर्स और रेगुलेशंस फॉर आर्मी बनाए जो कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके।
आपका जो रोल है वो जस्टिस इंश्योर करना है, तो किस प्रकार आप इस कार्य को अंजाम देते हैं? और साथ ही अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो मिलिट्री पर्सनल हैं जो फील्ड में हैं, उनके क्या क्या लीगल इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में कृपया हमें बताएं।
न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग भारतीय सेना की विधिक और नैतिक संरचना को सशक्त आधार प्रदान करता है। आज हमारे अधिकारी केवल सैन्य न्यायालय के निर्णय के माध्यम से न्याय का पालन ही नहीं करते बल्कि प्रत्येक सैन्य संगठन में कमांडर के मुख्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। युद्ध और शांति के समय विभाग के अधिकारी अपने निर्णयों के माध्यम से सेना के अनुशासन, नैतिकता और कार्यशैली को दिशा प्रदान करते हैं। सेना की जटिल संरचना में जहां प्रत्येक निर्णय को न केवल विधिक बल्कि सामरिक महत्व होता है, हमारे अधिकारियों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। उनके द्वारा दिए गए निर्णय सेना की गरिमा को बनाए रखते हुए और न्याय के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विभाग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का वह स्तंभ है जिस पर सैन्य अनुशासन का पूरा ढांचा टिका हुआ है।
अगर बात करें कि जो सैन्य न्याय व्यवस्था है जिसके आप गार्डियन हैं वहाँ पे सर, उसको सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं?
सैन्य न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ये होल्ड किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर्मी में इज वेरी फेयर एंड उसके लिए हम जो भी कार्रवाई करनी होती है हम कानून संवत कार्रवाई करते हैं। हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जो कानून से अलग हो। इसलिए हर अधिकारी जब भी वो कोई एडवाइस दे रहा है या कोर्ट मार्शल में जज एडवोकेट की ड्यूटी कर रहा है या कोई और भी लीगल काम कर रहा है, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसका जो काम है वो न्याय सम्मत होना चाहिए।
सबसे पहले आपसे विदा ले, क्या संदेश देंगे आप हमारे श्रोताओं को और खासकर उन जवानों को जो अक्रॉस द कंट्री आपको सुन पा रहे हैं?
मैं सभी अपने अधिकारीगण, समस्त जेसीयू साहिबान और अपने वीर जवानों के लिए ये संदेश देना चाहूंगा कि वे अपने कर्तव्यनिष्ठ विवेक के साथ, बहादुरी के साथ अपने कार्य का कार्यान्वयन करें और राष्ट्र की गरिमा को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरव।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
In today's episode, we remember revolutionary Thakur Pyarelal, who was born on December the 21st, 1891, in Daihan village of Rajanandgaon district, Chhattisgarh. He awakened the public for the national movement and is widely regarded as the founder of the labor movement, as also the leader of the cooperative movement in Chhattisgarh. For his immense contribution to national life, he was awarded the honorary title of Tyag Murti, which means epitome of sacrifice.
After completing his higher education and law, he came in contact with the revolutionaries of Bengal in 1906. He started the promotion of revolutionary literature and organizing the students. In 1920, Rajanandgaon mill workers, led by Thakur Pyarelal Singh, started a strike that lasted more than 37 days. This was India's first long-term strike and it managed to reduce the workers' working hours.
With the initiation of the non-cooperation movement by Mahatma Gandhi, he began to campaign for Indian independence. In 1923, Thakur Pyarelal led flag satyagraha in various regions of Chhattisgarh. In 1924, he led another mill worker strike in Rajanandgaon, resulting in further concessions to the workers. He moved to Raipur in 1925 and worked towards Hindu-Muslim unity and upliftment of so-called lower caste. He was imprisoned many times by the British for his nationalistic activity.
Pyarelal was elected as president of Raipur municipality in 1937. He established Chhattisgarh Weaver Cooperative Association in 1945 to organize the weavers of Chhattisgarh region. After independence, Thakur Pyarelal travelled to the northeastern parts of India in 1950 with an aim to encourage education among the population, launching the publication Rashtra Bandhu with the same purpose.
In 1951, Pyarelal resigned from Congress and became a member of the All India Kisan Mazdoor Party, a Gandhian organisation led by Chairman Acharya Kripalani. He was elected to the Legislative Assembly from Raipur in 1952 and became the leader of the opposition. He helped extend the Bhudan and Sarvodaya movements of Vinoba Bhave to Chhattisgarh. He traveled extensively on foot across the region over the next 2 years, visiting villages to promote the Bhudan movement.
He started in 1954 with the aim to walk 2,200 miles and visit over 300 villages in 3 months to spread the message of the Bhudan movement. Despite being unwell, on the 20th of October, he continued to deliver a speech before suffering a fatal heart attack later that day. On the 22nd of October 1954, he was cremated on the banks of the river Karun. We salute this great nationalist who continued to work for betterment of citizens till the very end.
On 21st of December 1909, Anant Lakshman Kanhere, a 17-year-old student of Aurangabad, shot the magistrate of Nashik, Jackson, at a theatre where a drama was to be staged in his honour on the eve of his transfer. It is said that Jackson was shot as he was instrumental in getting freedom fighter and elder brother of Vinayak Damodar Savarkar, Ganesh Savarkar, arrested and finally prosecuted.
Jackson got Ganesh Savarkar arrested for printing a 16-page book of songs of Kavi Govind, as he believed that Abhinav Bharat Society was engaged in seditious activities. Krishnaji Karve, Vinayak Deshpande and Anant Kanhere decided to kill Jackson before his transfer to the post of Commissioner of Bombay. Anant decided to execute the plan at Jackson's farewell function.
On 21st of December 1909, when Jackson came to the farewell function, Anant jumped in front of him and shot 4 bullets, killing Jackson immediately. The murder created a great deal of sensation in Nashik, Pune and Mumbai, and it even created disquiet among Indian nationalists because of Jackson's reputation as a sympathetic and popular district officer.
Anant Kanhere, Krishnaji Karve and Vinayak Deshpande were prosecuted in Bombay court and attained martyrdom on the 19th of April 1910. We salute the martyrs.
और अब खेल जगत की गतिविधियों की जानकारी ले लेते हैं. भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल वडोदरा में खेला जाएगा. ये मैच दिन में 1:30 बजे शुरू होगा.
And All India Football Federation, AIFF, has announced that India women's team will host Maltese for 2 FIFA international friendly matches on 30th December and 2nd of January. The matches will be played at the Padukone Dravid Centre for Sports Excellence in Bengaluru. As per the latest FIFA rankings released on the 13th of this month, India is ranked 69th while Maldives is at 163.
और अब समय है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज जयंती है. इस क्रम में सबसे पहले हम किसे याद करेंगे, पहले ये सुन लेते हैं.
इस धुन में धड़कते दिल के तराने लिए.
और अब आएगा उस साल की छाओं से चुना हुआ इस वॉल्यूम नंबर 36 का आखिरी गीत, यानी छाओ का आखिरी गीत.
सारा समझ में आया?
यस, जिसे कहा जाता है कुछ लोगों के लिए कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, तो ऑफ कोर्स ये आवाज अमीन सयानी की उनकी पहचान बन गई बिना का गीतमाला से.
बिल्कुल, आवाज के जादूगर. रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी के रूप में इन्हें जाना जाता था और रेडियो जॉकी के रूप में वे विश्व के श्रेष्ठ जॉकी माने जाते थे. गीतमाला प्रोग्राम के जरिए सुनी गई अमीन सयानी की आवाज बहनों और भाइयों आम लोगों को काफी लंबे समय तक गुदगुदाती रही है. करीब 40 वर्ष तक रेडियो सीलोन के जरिए अमीन सयानी की प्रस्तुति और बाद में विविध भारती पर इसके प्रसारण को लोग आज भी याद करते हैं.
बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ. जी हाँ, अमीन सयानी. और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें.
And we are also remembering a fine actress of yesteryears, jinke keh sakte hain dance numbers bahut zyada mashhoor the. Aur Guru Dutt ne in fact sabse pehle unko discover kiya tha. He wanted to film the song Kabhi Aar Kabhi Paar Laga Tere Nazar for his movie Aar Paar, but then he decided to film film it on a female. Unko koi mil nahi rahi thi, but then he spotted कुमकुम. Yes, today we are remembering कुमकुम. And well, उनके बारे में ज्यादा बात करने से अच्छा है क्यों ना एक और गाना सुना जाए.
मेरा सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया।
Today is also Govinda's birthday, and of course we all know him again for his amazing dance, especially in a Bollywood that we call, and let's listen to this song.
मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, ओ रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सारा मुस्तफा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
Yes, it's time to call our wrap. Stay tuned because our 5 o'clock bulletins are coming up in Hindi and English. Stay tuned to FM Gold. DJ Mukesh Asaira ko ijazat.
Namaskar.